भक्ति के अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 138। ओम नमः सिद्धे
त्रिभुवनतिलकं देवं
वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं
वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है उसके हम लोक भावना को देखते हुए पेज नंबर 20। ओ, ओ धर्म भावना, अच्छा धर्म भावना अपना कह जाता गलत, उसके बाद बोधि भावना भी देखी थी, आज है धर्म भावना। और ये धर्म भावना में हम 303 नंबर की गाथा को देखते हुए 26 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं और यहाँ अर्थ के बाद का पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर हमने ये अर्थ फिर से दोबारा देखते हैं। हे सर्वज्ञना अभाववादी, यानी जो जीव सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते ऐसे जीवों की बात कही है। जो सर्वज्ञ न हो तो अतीन्द्रिय पदार्थ हो, इंद्रिय गोचर नथी एवा पदार्थ हो, कौन जाने। यानी एक बात निश्चित होती है कि जो क्या कह रहे थे, सर्वज्ञ भगवान है। सर्वज्ञ किसको कहेंगे कि जो सूक्ष्म दूरवर्ती और अंतरित पदार्थों को भी जानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है यानी जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे पदार्थ जो है और जो अतीन्द्रिय है ऐसे जो पदार्थ है, इनको अगर सर्वज्ञ भगवान नहीं होते तो कौन जानते। इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रियों ना संबंध मा आवेला, वर्तमान स्थूल पदार्थ ने जाने छे, तेना पण समस्त पर्यायों ने ते जानतो नथी। यहाँ कल हमने देखी थी कि इंद्रिय ज्ञान क्या करता है कि अपने अपने विषयों को ही जानेगा, एक बात। दूसरी बात, वर्तमान में जो है बात चल रही उसी को जानेगा। और तीसरी बात हमने देखी थी कि सूक्ष्म अगर होवे तो उसको वह नहीं जानते हैं, स्थूल को जानेंगे। यहाँ तक तो हमने कल देखा था, आगे बढ़ेंगे। आत्मानो ज्ञान स्वभाव छे, तो मेरा ये प्रश्न है, ज्ञान है वो दिखता है कि नहीं। हम तो कहते हैं आ मानस बहु होशियार छे, तो बिना देखे हम कैसा बोलते और क्यों नहीं देखते। हाँ बापा, ज्ञान को हम क्यों नहीं देख सकते, क्या देख सकते हैं। हाँ, आपका कहना है ज्ञान अतीन्द्रिय है, तो आपको ज्ञान है क्या, तो वो अतीन्द्रिय है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान है आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छद्मस्थ हो तो क्या हुआ, आप बता पाएंगे कुछ नहीं। हाँ, क्या बताए यार, जोर से बोलना, ये हमको सुनाई नहीं देते हैं। अरूपी है, अरूपी है यानी क्या है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण प्रमुखता से, यानी अन्य गुण भी उसके साथ नहीं है, इसलिए वो कैसा है, आत्मा स्वयं अरूपी है, अमूर्तिक है। तो आत्मा काहे से बना है, तो कहते हैं अनेक गुणों से वह बना हुआ है, अनंत गुणों से वह बना हुआ है। तो उसके गुण तो मूर्तिक और आत्मा अमूर्तिक, ऐसा होगा कि नहीं? तो हम आत्मा को क्यों नहीं देख सकते, सॉरी ज्ञान को क्यों नहीं देख सकते, इसका सिंपल रीजन ये है कि आत्मा स्वयं अमूर्तिक है, अरूपी है, तो ज्ञान भी, हाँ तो ज्ञान भी दिखाई नहीं देगा, यानी चक्षु इंद्रों के द्वारा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ क्या कह रहे, देखो देखो, आत्मानो ज्ञान स्वभाव छे, ते ज्ञान स्वभाव नी प्रतीत करीने, यानी यहाँ प्रतीत का अर्थ श्रद्धा, कि वह कैसा है ज्ञान, उसकी सही सही श्रद्धान करीने, तेमा एकाग्र थता एवु परिपूर्ण ज्ञान प्रकटे छे, के सर्व पर्यायो ने ते जाने छे। ते एटले कौन, ज्ञान, ये क्यारे सर्व पर्यायो ने जाने, हाँ बेन, हाँ क्यारे 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 परिपूर्ण क्यारे था, हाँ सम्यक दर्शन थवाती, जया बेन, प्रभा बेन, अच्छा प्रभा बेन अपना क्या जाता है, प्रभा बेन ये बात सही कह रही है, हाँ केवल ज्ञान, कोई बात नहीं, हाँ देखो देखो परिपूर्ण किधर है बेन, तो ये क्यारे था है? तो कहे केवल ज्ञान थताश ते जीव ने आवा ज्ञान स्वभाव नी प्रतीत थाय तेने सर्वज्ञ नी प्रतीत तो होयज। क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है, कैसा, कि जो स्वयं परिपूर्ण अवस्था धारण कर सके, ऐसी जिसमें श्रद्धा है, तेने सर्वज्ञ नी प्रतीत तो होयज। क्यों, कि सर्वज्ञ का वह तो वास्तविक वर्तमान में अवस्था ही वैसी है, हम आप तो कैसे हैं, स्वभाव से केवल ज्ञान स्वभाव ही है। आज एक फोन आया, वो कह रहे थे कि आत्मा तो अशुद्ध है, अभी हमारे देखो कितनी अशुद्धि हमारे में, और हम अशुद्ध आत्मा का मनन चिंतन करेंगे तो हमको तो क्या फायदा है। तो उनको बहुत बार बताया, अरे स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध ही है, पर्याय में अशुद्धता है। तो उनको किसी ने ऐसा भूसा भर दिया, वो कहते नहीं हमारे कोई त्याग ही नहीं है, ना हमने किसी का त्याग किया है, हमारे में अशुद्धता बहुत है, और जो त्याग करते हैं उनकी शुद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा किससे सुना आपने, फिर उन्होंने बताया, समझ लेना आप आगे बढ़ेंगे। त्याग करने वाले होते ना वो, जे कल रात को भी आधा घंटा फोन चल रहा था, आज ऐसे ही, हाँ। जे जीव ने आवा ज्ञान स्वभाव ने प्रतीत थाय ते सर्वज्ञ ने प्रतीत तो होयज, यानी जिसने सर्वज्ञ स्वभाव को जाना है वह सर्वज्ञ को ही जानेगा मानेगा सब बातें हैं। छह पदार्थो अतीन्द्रिय ज्ञान नो विषय छे, क्या कहा, छह पदार्थों में किसको किसको लेना पापा, हाँ बस बस बस, तो छह पदार्थ आपने बताए, छह द्रव्य जो है, लेकिन यहाँ कह रहे कि छह पदार्थों अतीन्द्र ज्ञान नो विषय छे, ये आप देखते हैं कि नहीं, कौन सा रंग है, लाल है, कोई बात नहीं, तो आप तो आपका ज्ञान अतीन्द्र है क्या, तो कैसा जाना आपने इसको, हाँ छह पदार्थ, ये पदार्थ नहीं है, वाह बहुत अच्छा, हाँ तो छठा पदार्थ कौन सा है जो आपको अतीन्द्रिय है, वो बहुत अच्छा, उद्गल परमाणु, हमने देखा था ना सूक्ष्म को भी केवल ज्ञानी जाने, अतीन्द्रिय ज्ञान है ना उनका, और इसलिए क्या कहा, देखो घबराने का नहीं हो, धमाधम उत्तर देने का, छह पदार्थों अतीन्द्रिय ज्ञान नो विषय छे, जो सर्वज्ञ न होए तो ते अतीन्द्रिय पदार्थों ने क्यों जाने आत्मा अमूर्त अतीन्द्रिय छे तेमज धर्मास्तिकाय वगैरह चारों द्रव्यों पर अरूपी अतीन्द्रिय छे तथा मूल पुद्गल द्रव्य पर सूक्ष्म अतीन्द्रिय छे। आ गई बात इसमें वो तो कल हुई थी बात ये ए रीते छे पदार्थो अतीन्द्रिय छे इंद्रिय ज्ञान थी ते जनाता नथी जो सर्वज्ञ न हो तो आ छ पदार्थों कौन जाने छे द्रव्यो जगत में सच छे तो तेनु ज्ञान पर होवुं जोइए। क्या दलील की समझ में आई क्या कह रहे हैं छे द्रव्यो जगत में सत्य छे सच्चे ने विद्यमान छे। देखो अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ फिर मिली तुम बोलना मत मेरे को पूछा नहीं अभी इसे ध्यान देना मैं तुमको नहीं पूछने वाला हूँ सबको बता रहा हूँ छे द्रव्यो जगत में सत छे तो तेनु ज्ञान पन होवुं जोइए। ये जो वाक्य लिखा है तो ये वाक्य प्रूव करने के लिए हम कैसी दलील दे सकते हैं कि छह द्रव्य जो है उनकी सत्ता है तो सत्ता है तो कहते वो सत्ता का ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो ऐसा हम किस तरह से कह पाएंगे कौन बताना चाहेगा अरविंद भाई बहुत अच्छा बस 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 आ गई बात। देखो देखो सुनो अभी आपका क्या कहना है आपने एक ही पॉइंट में पूरा उत्तर दे दिया है। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य सत है यानी क्या विद्यमान है हम कहेंगे अस्तित्व गुण के कारण से हम उसको सत कहेंगे। अभी आज के तारीख में वैसे तो उत्पाद वे ध्रुव वो तो सत है ही है लेकिन एक गुण है तो एक गुण होगा तो दूसरा गुण उसके साथ में होगा हाँ उसको कौन सा संबंध कहते बेन हाँ नित्यता द्रव्य एक गुण का दूसरे गुण के साथ यानी एक ही द्रव्य के अनेक गुणों का एक दूसरे का साथ जो संबंध होता है वो अविनाभावी संबंध। तो यहाँ कहते हैं उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है तो प्रमेयत्व नाम का गुण है वो कौन से टाइप का गुण है भाई सामान्य गुण है यानी हर द्रव्य में है। तो ये जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हमें ज्ञात है तो अभी क्या कहते हैं छह द्रव्यो जगत में सच छे तो तेनु ज्ञान पन हो वो जो ये इसमें से तो सर्वज्ञ की सिद्धि की है क्योंकि विषय कौन सा चल रहा है सर्वज्ञ का चल रहा है ना भाई तो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ है कब से अरे जब से ये पदार्थ है कब से है कि जब से वो जान रहे हैं अरे पन कब है तो ज्ञानादि से क्योंकि वो है उनकी सत्ता है उनमें प्रमेयत्व गुण है दूसरे के ज्ञान का विषय बने ऐसी उनकी उपादान शक्ति है तो वहां निमित्त रूप से जानने वाला कोई ना कोई होगा ही होगा। और इसलिए कहते हैं छह द्रव्यो जगत में सच छे तो तेनु ज्ञान पन होवुं जोइए। आगे उत्तर दे दिया है एवु ज्ञान सर्वज्ञ ने छे है ना। देखो वो वाक्य में से सर्वज्ञ की सिद्धि करा दी जो घना कहे छे के संसार दशा में आत्मा मूर्त थी गयो छे तो तेनी वात झूठी छे आत्मा त्रणे काल अमूर्त छे। जो अत्यारे आत्मा कर्मना संगति मूर्त थई गयो होय तो मोक्ष पण मूर्त द्रव्य नो ज थाय एटले मोक्ष मा आत्मा तो न रह्यो आत्मा तो अमूर्त स्वभावी अतीन्द्रिय ज्ञान नो ज विषय छे। वड़ी भूत भविष्यना पर्यायो पदार्थो तेमज दूर क्षेत्रे रहेला पदार्थो ये देखो यहाँ दो तीन बातें हमने क्या क्या देखा था सूक्ष्म दूरवर्ती और अंतरित तो दूरवर्ती में देखो यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताई यहाँ भूत भविष्य के पर्याय को कोई कहते दूरवर्ती कोई कहते हैं अंतरित और कभी कभी क्षेत्र की अपेक्षा से भी उसको दूरवर्ती भी कहते हैं और अंतरित भी कहते हैं। अभी जो है वो समझ लेना यानी इतना तो हम नक्की करें कि दूरवर्ती और अंतरित तो यहाँ उन्होंने बताया भूत भविष्य ना पदार्थो तेमज दूर क्षेत्र रहेला पदार्थो ते इंद्रिय ज्ञान थी जनाता नथी તો તેના જાણનાર કોઈ હોવાતો જોઈએ તે સર્વજ્ઞ જ્ઞાનથી જણાય છે. જો સર્વજ્ઞ ન હોય તો જગતમાં અતિન્દ્રિય પદાર્થો છે એમ ક્યાંથી જણાય? સર્વજ્ઞ વિના તેને કોણ જાણે? વળી ધર્મ અને અધર્મ તથા તેના ફળરૂપ મોક્ષ સ્વર્ગ કે નરક તે બધા પણ અતિન્દ્રિય છે. યે ધર્મ ઓર અધર્મ કિસકો કિસકે લિયે બતાયા મિલીભાઈ? અને મોક્ષ સ્વર્ગ નરક વગેરે જો બાત બતાએ. વાક્ય પઢો ફિર સે. વળી ધર્મ અને અધર્મ તથા તેના ફળરૂપ મોક્ષ સ્વર્ગ કે નરક તે બધા પણ અતિન્દ્રિય છે. તો યા ધર્મ અધર્મ કો કિસકો લેના? કોઈ બાત નહીં, દોનોને સહી ઉત્તર દિયા. ઇનોને રાગ દ્વેષ કહા, આપને શુભ અશુભ ભાવ કહા. ધર્મ કી જગહ વહાં હમ શુભ પરિણામ કહેંગે, ક્યોંકિ ઉનકે ફલ મેં ક્યા બતાયા હૈ. હા જી, હા
વિતરાગતા લેના, ક્યોંકિ ઉસકે ફલ મેં મોક્ષ બતાયા ના.
ચલો ચલો, એસા ભી લે લો.
શુદ્ધ શુભ અશુભ સબ તીનો લેના.
લેકિન ધર્મ ઓર અધર્મ દો હી ઓપ્શન હૈ, તો અધર્મ મેં દોનો કો ડાલના પડેગા.
હા, અધર્મ મેં શુભ અશુભ, અધર્મ મેં શુભ અશુભ,
હા,
ઓર ધર્મ મેં વિતરાગતા.
શુભ મેં સ્વર્ગ ઓર અશુભ મેં નરક. ચલો ભેજ દો. તે પણ બધા અતિન્દ્રિય છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વિતરાગ ચારિત્ર રૂપ વિતરાગ પર્યાય તે અતિન્દ્રિય છે. તેમજ પુણ્ય પાપના ભાવ પણ અતિન્દ્રિય છે. એને સર્વજ્ઞ વિના કોણ જાણે? માટે જગતમાં સર્વજ્ઞ છે એમ નક્કી કરવું જોઈએ. સર્વજ્ઞનો નિર્ણય કરીને પછી તેમના કહેલા તત્વોનો નિર્ણય કરો. સર્વજ્ઞ દેવે કહેલા ધર્મનું વર્ણન કરે છે. અબ આગે
હવે પહેલે લાઈન મેં સંગા શક્તા નામ લિખા ને, વો શક્તા નામ કહેના.
સ ચાહીએ ને,
સ. સંગ મેં જો આસક્ત હૈ, સંગા શક્ત. સંગ યાને ક્યા? સંઘ નહીં કહા, સંગ કહા. ગ હે વો ગ, પરિગ્રહ.
હાં, આપ ક્યા કહે રહી થી?
ये किसी के संग में जाना, साथ में जाना, वो संग नहीं है. यहाँ छड़ाला में क्या आता है? छड़ाला में है ना, दुविध संग बिना मुनियों को क्या
शब्द है ना, संगा संगा सक्ता नाम. स चाहिए, श नहीं, निसाड़.
मैंने ऐसा भी कहा, छड़ाला में आए ना मुनि कैसे है, दुविध संग बिना. संग दो प्रकार के संग से रहित. कौन से दो प्रकार के संग यानी परिग्रह होते हैं? अंतरंग और बहिरंग, उसकी बात है. ये संगासक्त यानी संग में आसक्त, परिग्रह में आसक्त वाले हैं, और असंग यानी मुनिराज है. हम कहेंगे यहाँ क्या देखते हैं, पढ़ेंगे पहले, फिर इसका अर्थ देखेंगे. पहले में पहले सर्वज्ञ, ये धर्म भी सिंगल म चाहिए. पहले में पहले सर्वज्ञ की बात, उनकी सिद्धि की है. अब उन्होंने जो बताया है धर्म, वो क्या है उसको यहाँ बताएंगे. तेन उपदिष्ट धर्म संगासक्तानां तथा असंगानां प्रथम द्वादश भेद दश भेद भाषित द्वितीय. तेन तेन ने उनके द्वारा, किसके द्वारा? सर्वज्ञ ने बताया हुआ. देन उपदिष्ट, उन्होंने उपदेशित किया हुआ धर्म किसके किसके है? संगासक्ता नाम यानी जो श्रावक जो है, परिग्रह में अभी आसक्त है वो श्रावक है, तथा असंगा नाम और जो असंग है वो मुनिराज है. यानी गृहस्थ का धर्म और मुनियों का धर्म, ऐसे दो प्रकार से उपदेश है सर्वज्ञ भगवान ने जो उपदेश दिया है. प्रथम द्वादश भेद, प्रथम महीने कौन सा? गृहस्थ के लिए जो धर्म है वो कितना है? तो 12 भेद रूप है। ये 12 भेद रूप है, यहाँ जो व्यवहार धर्म की बात है। निश्चय से तो धर्म एक ही होता है, वो वितरकता है, और उसका जो अलग अलग लक्षण बताया जाता है उपचार से बताया जाता है, तो उसको 12 प्रकार का धर्म कहा है यहाँ। और मुनिराज के कितने? 10 भेद द्वितीय ने जो असंग जो है, मुनिराज जो है, उनके 10 प्रकार का धर्म है। सुना है कभी? 10 प्रकार का धर्म सुना है? 10 लक्षण धर्म। धर्म तो एक ही है, उसके लक्षण 10 अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन करने में आता है, तो उसको 10 प्रकार का धर्म भी कहने के लिए कह देते हैं। देखो यहाँ का अर्थ देखते हैं। ए सर्वज्ञ देव थी उपदेशित, उपदेशिते ने उनके द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म बे प्रकार थी छे। एक तो संग थी आसक्त गृहस्थनो, अने बीजो असंग मुनिनो। दो प्रकार के अलग अलग है ना? आपको कोई ऐसा अंग पता है जिसमें मुनियों के लिए कोई उपदेश है और कोई एक श्रावक के लिए कोई अंग है? आचारांग मुनियों के लिए, और उपासका ध्यानांग। हाँ, तो श्रावकों के धर्मों का वर्णन है उसमें। क्या प्रथम गृहस्थनो धर्म तो 12 भेद रूप छे, तथा मुनिनो धर्म 10 भेद रूप छे। ये कौन कौन से भेद है, क्या है, वो आगे की गाथा में आने ही वाला है ये सारा।
अच्छा।
इसलिए हम क्रम से वहीं पर देखेंगे उसको। तेमा गृहस्थ धर्मना 12 भेद छे ते कहे छे। एक्चुअली गृहस्थों के जब 11 प्रतिमाएं कहने में आती है, और उनके जो व्रत है वो 12 प्रकार से है।
ये 12 प्रकार के व्रत कौन से हैं नलिन भाई? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, याद थे आपको? कोई बात नहीं, याद करके आना कल। शुक्रवार को तो आना ही आना है। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अभी उसकी डिटेल आएंगे, यहाँ नहीं है लेकिन बताएंगे। यहाँ तो 11 प्रतिमाओं के नाम है।
पहले तो 11 प्रतिमाएं बताई जाएगी, फिर आगे चलकर उसको 12 अलग बताएंगे। हाँ। आगे की गाथा, क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन तो है नहीं, वही बताना है ना।
हाँ,
तो हम आगे की गाथा, दो गाथा एक साथ लेनी है वहाँ, 305 और 306 नंबर के। आगळ गृहस्थ धर्मना 12 भेदोना नाम बे गाथामां कहे छे। एक्चुअली यहाँ जो नाम बताए हैं वो सब 11 प्रतिमाओं के ही हैं।
प्रतिमा की है।
और एक शुद्ध सम्यक दर्शन, ऐसे मिलकर 12 हो गए। अभी इसमें जो करेक्शन है, सेकंड लाइन में पर्व वो सिंगल चाहिए, और प्राशुक लिखा है वो प्रासुक चाहिए मेरे ख्याल से।
प्रासुकाहारी।
पहले हम गाथा पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध रहित मध्यादि स्थूल दोषैः व्रतधारी सामयिक पर्वव्रती प्रासुकाहारी रात्रि भोजन विरत मैथुन सारंभ संग त्यक्तश्च कार्यानुमोद विरत उद्दिष्टाहार विरतश्च। जिसको 11 प्रतिमाओं के नाम मालूम है उसको साथ यहाँ हम देखते हैं। पहले सम्यक दर्शन शुद्ध, शुद्ध सम्यक दर्शन कहो, या अतिचार रहित दोष रहित ऐसे जो है, तो इसको पहले दर्शन प्रतिमा कहते हैं। तो वहाँ पांचों ही पापों का स्थूल त्याग होता है, तभी तो पांचवा गुणस्थान कहेंगे। बारह व्रत नहीं है परंतु पांच अनुव्रत यह धारण करता है जीव, स्थूल पापों का त्याग है उसके। तो यहाँ कहते हैं मद्यादि स्थूल दोष ही, मद्य आदि का तो त्याग है ही है, वो तो सम्यक तो पहले से ही, सम्यक तो होने के पहले से होता है, परंतु स्थूल दोष यानी स्थूल पापों का त्याग है। तो ये पहली प्रतिमा जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। फिर व्रतधारी, ये दूसरी प्रतिमा है जिसको, जिसका नाम है व्रत प्रतिमा। अभी जो आपने बताया ना बारह व्रत, वो क्या होते हैं उसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। तो उसके देखो अकेले बाह्य व्रत की बात नहीं होती, जितनी अंतरंग स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे बाह्य में भी वैसे स्वयमेव कषाय की मंदता होती है, क्योंकि वितरागता बढ़ती है तो कषाय मंद होते जाते हैं और बाह्य में ऐसे व्रत अंगीकार करने के सहज परिणाम भी होते हैं। तीसरी है सामायिक प्रतिमा है, तो दिन में तीन बार, हाँ ये तो बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठते हैं, यहाँ तो सामायिक व्रत है ये, और मुनियों के होता है वो सामायिक नाम का तप है। हाँ क्योंकि यहाँ तो शुभ भाव की मुख्यता अधिक है, सामायिक में यानी एकांत स्थान में बैठकर परमेष्ठी का चिंतन किया जाता है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन किया जाता है, तो शुभ भावों की मुख्यता है, उसी काल में उसके आत्मा की अनुभूति भी होती रहती है। तो ये सामायिक व्रत है। पर्वव्रती, इसका नाम क्या है किसी को पता है? ग्यारह प्रोषद उपवास, प्रोषद। और पांचवी है प्रासुकाहारी, उसका नाम क्या है? सचित्त त्याग व्रत, सचित्त त्याग प्रतिमा। फिर रात्रि भोजन विरत, रात्रि भोजन त्याग। आप कहेंगे ये तो चौथे वाले को भी होगा या मिथ्या दृष्टि को भी होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है? हाँ प्रतिज्ञा पूर्वक है, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना सभी से। फिर मैथुन त्याग ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग आठवीं प्रतिमा है, और संग त्याग यानी परिग्रह त्याग। आगे चलकर लिखा है कार्यानुमोद विरता यानी अनुमति त्याग, जिसको हमने कहा है यानी घर में कोई शादी है, कोई व्यापार की बात पूछते हैं बच्चे लोग, तो जिसने ये प्रतिमा धारण की है तो उसमें किसी में अनुमति नहीं होगी उसकी। उद्दिष्ट आहार विरता यानी उद्दिष्ट आहार का त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती है, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार और उनके उद्देश्य से बनाई हुई वसति का, रहने का ठिकाना, इनका उनके त्याग होता है, ये उद्दिष्ट विरति त्याग होती है, उद्दिष्ट विरति कहते हैं उसको। अभी हम यहाँ का नीचे का अर्थ देखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध छे जेने एवा मद्यादिक, मद्यादिक में किस किस को लेना? मांस मध्य और मधु, मध शहद जिसको कहते हैं,
मध्य और मदिरा एक ही है।
हाँ और पांच उदुम्बर फल, हाँ अष्टमूल गुण, वो तो हमारे घर में बालक जन्मता है पहली बार मंदिर ले जाते हैं तो उसके कान में नमोकार मंत्र भी देते हैं और इनको व्रतों का भी उसको व्रत दिया जाता है और उसको पालन करने की जिम्मेदारी माताओं की होती है, ख्याल है ना? जब तक बच्चा 8 साल का नहीं होता है तो मधुमध्य और त्याग जो है और पांच उदुम्बर फल, तो बच्चा वो भक्षण नहीं करता है ना, उसके प्रति माता को सजग रहना होता है, ये माता की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा स्वयं समझने लगता है तो फिर वो स्वयं वो व्रत आगे पालता है।
यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम समझेंगे 45 दिन का बालक या बेबी जो भी होगी वो क्या बोलना भी नहीं समझती है, उसको कान में हम मंत्र देंगे या कोई हम नमोकार मंत्र और ये उसको तेरी आज से ऐसी त्याग है इन बातों का ऐसा कहे, वो बच्चा क्या संभालेगा। लेकिन हम बालकों को इससे निगरानी से रखें कि जिनके कारण वह ऐसी बात जैसा चॉकलेट है, केक है आदि जो बातें हैं, तो आप बच्चों को पहले से सिखाया जाए कि भाई ये हम नहीं लेते हैं। हमने बहुत बार आपको बताया था अमेरिका में हम
जिसमें इंडिया है या जो अन्य कोई अभक्ष है, ऐसे चॉकलेट है, केक है, ये तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। आप अमेरिका की बात बता रहे हैं,
तो बच्चे समझेंगे, ऐसा नहीं। देखो वहाँ पे एक हॉलोवीन नाम का एक प्रोग्राम होता है अमेरिका में, तो उसमें क्या है, सब बच्चों को घर घर जाते हैं, अपने यहाँ जैसा माधुकरी मांगते हैं ना, तो वैसा वो घर घर जाते हैं और उनको सब लोग कुछ कुछ
चॉकलेट
वॉकलेट मिठाई फिठाई जो भी उनके पास, वो तो चॉकलेट ही घर में कौन बनाता है, देते सब गोली बिस्किट कुकी फुकी जो भी बोलते हैं।
स्कूलों में तो भी वो प्रोग्राम
सब चलते हैं। तो ये जहाँ जिनके घर में हम रुके थे वो लड़की आई स्कूल से, मम्मी को बोली मम्मी इसमें मैं क्या क्या खा सकती हूँ, तो उसके पास तीन बड़ी बड़ी बैग भरी थी ऐसी,
चार साल की बच्ची,
चार साल की हार्डली, और वो मम्मी ने बोला ये है ये है, इसमें से दस पांच इतनी निकली, मुझे बाकी ये अपने को खाने जैसे नहीं है बेटा। तो उसने बैग उठाई, सब भरी हुई थी, जाके वो कचरा पेटी
गार्बेज
गार्बेज में डाल के आए, बोलो। और ये कौन था, तो उज्ज्वला के बड़े भाई के बेटी की बेटी, अब उससे आगे औरंगाबाद में हम गए थे, हाँ, तो वहां वो लड़के को क्या बोलते हैं, बर्थडे होता है तो जाते हैं तो केक केक खाओ केक खाओ, सबको बोलते मैंने खाऊंगा मैंने खाऊंगा, बोलते क्यों, मैंने खाऊंगा क्योंकि उसमें अंडा है, ऐसा जोर से चिल्लाए वो भी तीन साल का लड़का मोना का। यानी मैं ये कहता चाहूँ, ये हमें तो हमारे घर के लोग मालूम है ना, आपको तो अपने मालूम होंगे, लेकिन इससे ये निश्चित होता है कि हम बालकों पर ऐसे संस्कार करें कि वो उससे दूर रहे। अभी बालक भी कैसा बालक होता है वो भी समझाता हूँ मैं। तो वो जो सोहम है ना, यानी मोना का लड़का, वो स्कूल में जाता था, लोअर केजी के हायर केजी क्या होता है उसमें, वो तो बैठा तो मम्मी आज हमको स्कूल में खिलाते हैं वो लोग खाना वाना सब उधर ही, तो क्या था, तो पुलाव था, तो तूने कैसा खाया, नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, तो क्या हुआ, तो उसमें जो फ्लावर था ना तो मैं बाजू वाले के इसमें डालता था, फ्लावर तो मैंने नहीं खाया, मैंने खाली चावल चावल खाया, तो अरे तू उसमें क्यों डाला, वो क्या मुसलमान है ना कुछ भी खाते खाने दो। उसका कौतुक नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे भी ऐसा सोचते हैं, उसको क्या है? वो कुछ भी खाते, अब ये सही सोच नहीं है, फिर भी उसने स्वयं ने नहीं खाया, ये बात विशेष हमने को हमको ध्यान में रखनी है। यानी ये बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बालकों को हम हमारी यानी माँ बाप की जिम्मेवारी है कि भाई वो ऐसा कुछ चीज नहीं खाए। इसलिए आपको बताया, ये आपको मालूम भी नहीं होगा, 45 दिन के बालक को हम मंदिर जी में ले जाते हैं, उसको दर्शन करवाते हैं, उसके कान में, हाँ अभी अगले टाइम ध्यान रखना, हाँ चलो आगे। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं कि जो हम अच्छी तरह से, अभी बहुत सारी इतनी है, लेकिन ये दो तीन आइटम आपको बहुत बार सुना है इसलिए दोबारा सुना दिए।
ये सोहम चार साल का और उसके दूसरे भी पाठशाला वाले, ये 11 प्रतिमा फटाफट बोल देते सभी बच्चे, 10 धर्म क्या है, 11 प्रतिमा क्या है, 12 ये सब बातें, 12 अनुप्रेक्षा भी है ना, ये सभी बताएंगे फटाफट,
12 भावना,
हाँ 12 भावना है, 14 गुण स्थान है, मार्गणा है,
वो अपने पास उसकी सीडी भी है, मतलब कभी अभी टाइम नहीं ना अपने पास, नहीं तो बच्चों को सुनने जैसा है। चलो चलो
देखो अभी यहाँ आगे पढ़ते हैं। सम्य दर्शन शुद्ध छे जेने एवा मध्यादिक स्थूल दोषोति रहित दर्शन प्रतिमा धारक।
अभी एक मिनट, मध्यादिक स्थूल दोष लिखा ना, तो अभी उसमें भी कोई अतिचार होते हैं, अभी मैं तो इससे लिखा नहीं है, लेकिन जैसा हमने मद्य नहीं खाना है तो ऐसी कोई दवाएं होती है उसमें वो आता है, मधु जो होता है यानी मध, उसमें भी क्या है वो गुलकंद आदि जो हम खाते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी वो है। ये छोटी छोटी बातें होती है, हमारे ज्ञान में नहीं आती है, लेकिन ये समझने
के लिए चौथे वाले को त्याग होता है, परंतु यहाँ तो बिल्कुल उसमें कोई अन्य थोड़ा भी दोष न लगे इस तरह से यहाँ बात होती है। तो मद्यादि का भी त्याग है और स्थूल पापों का भी त्याग है।
हाँ।
पांच अनुव्रत जिसको कहने में आते हैं, ये दर्शन प्रतिमा धारक।
ये खास करके ये बताना है कि कफ सिरप मिलते हैं बाजार में, दवा बोल के कफ सिरप मिलते हैं, उसमें बिल्कुल समझ लेना कि क्या क्या अंदर है करके, उसमें तो खास करके ये वापरा जाता है, मद्यार्क जिसको बोलते हैं। हम कभी भी कोई दवा लेते हैं, प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर करेंगे, उस समय उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख के वापरे तो अच्छा है। हाँ, अब दूसरा मध्यादिक स्थूल दोषों से रहित दर्शन प्रतिमा धारक के आगे, अरे यहाँ लिखा है बॉस
पांच अनुव्रत, ये बारह कौन कौन से वो बताते हैं, बारह व्रत है ना श्रावक के, उनके नाम यहाँ बताए हैं। देखो पांच अनुव्रत, त्रण गुणव्रत अने चार शिक्षा व्रत। ये गुणव्रतों के नाम क्या है नलिन भाई, याद है? हाँ, और शिक्षा व्रत, हाँ परिमाण, हाँ अतिथि संविभाग, हाँ
बहुत अच्छा।
ये जो ऐसे एवं बार व्रतों सहित व्रत प्रतिमाधारी, ये दूसरी प्रतिमाधारी है। फिर सामायिक प्रतिमाधारी, इसकी तो बात अभी हमने देखी थी। पर्वव्रति, पर्व किसको कहते हैं? हाँ प्रभावेन, पर्व में जो व्रत धारण करते हैं पर्व किसको कहना लक्ष्मी? हाँ अष्टमी चतुर्दशी आठम ने चौदस
अष्टानिक भी पर्व है।
हाँ तो ये तो हर महीने में आने वाले ये जो पर्व के दिन है, तो सातवें यानी सप्तमी के दिन क्या करते हैं? एकासन, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन फिर एकासन। और ये सारा काल क्या इतना का समय बचा ना भोजन में से, छुट्टी मिली तो क्या करेंगे? टीवी के सामने बैठेंगे? हाँ तो स्वाध्याय जो है सामायिक है, तो इसी में पूरा दिन बिताते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी। प्रासुक आहारी, प्रासुक भोजन, प्रासुक कैसे? जैसे सचित्त का त्याग है, सचित्त भोजन किसको कहते हैं बोलो? हाँ जो वनस्पति, देखो मध्य आदि का तो त्याग ही है, अब यहाँ जो खाने योग्य है भक्ष्य जो है उसमें भी जो अभी हम वनस्पति वगैरह फल फ्रूट जो कुछ है, तो उसको किस विधि से बराबर प्रासुक बनाना जैसे शास्त्र में बताया है उस अनुसार उसको बना के खाना, उसको कहते हैं प्रासुक आहारी। रात्रि भोजन त्यागी, इसकी भी बात की थी, मनवचन काय और कृतकारिता और अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग है, ना स्वयं खाता है ना दूसरों को खिलाता है, और रात्रि बनाया हुआ भी दूसरे दिन नहीं खाएगा, ना स्वयं खाएगा ना दूसरे को खिलाएगा। इस जीव को नहीं होगा, जिसने प्रतिमा ली है उसके तो कुछ नहीं होगा, नहीं पानी भी नहीं,
चोवियार
यानी वो, यानी वो दूसरों को भी नहीं खिलाएगा। हमने तो ऐसे देखे वाशिम में एक फैमिली, तो पूरे यानी कोई जमाई भी आएगा तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, ना चाय बनाते ना दूध देते कुछ नहीं, ना स्वयं खाते ना दूसरों को खिलाते हैं।
तो उनके घर के जमाई इतने अच्छे हैं कि रात को उधर आएंगे तो बाहर में खा पी के आते हैं, घर में तो भूखे ही रहना पड़े ना।
अभी सातवीं प्रतिमा है, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। यहाँ भी मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना सब उसमें लागू होते हैं। आरंभ त्यागी, आरंभ का अर्थ होता है वो संरंभ समारंभ आपने आरंभ ने एक्चुअल कार्य जो हाँ, तो उसमें हिंसा दी जो है कार्य उसका त्याग है। परिग्रह त्यागी, आरंभ है ना जिनमें हिंसा होती है ऐसे क्रियाएं ऐसे कार्य। परिग्रह त्यागी, अब है तो गृहस्थ फिर भी उसने हाँ परिग्रह की लिमिट कर दी है तो परिग्रह त्यागी। कार्यानुमोदना रहित, जिसको अनुमति त्याग प्रतिमा कहते हैं, उसकी भी बातें भी बीती थी।
उसमें विशेष रूप से कोई भी हिंसा का कार्य होगा उसमें अनुमति नहीं होती है।
जैसे व्यापारी अधिक है वहाँ भी परिग्रह भी है ना, वो व्यापार क्या है हाँ, तो उसमें कोई यानी अभी तक जो हमने देखी है प्रतिमाएं उसमें कहीं दोष लगे ऐसा वो उसमें अनुमति नहीं देगा, या उसके साथ वो कोई उसको सलाह भी नहीं देगा। अनुमति की बात क्या, सलाह भी नहीं देगा। जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली है, प्रतिमा ली है, और अभी वो शादी ब्याह में जाना या उसके दूसरों की शादी ब्याह रचाना या उसमें अनुमोदना देना ये कुछ नहीं होगा उसके लिए। यानी कौन से प्रतिमा तक वो गया है उसके डिपेंड्स। उद्दिष्ट आहार की भी हमने बात की थी, उद्दिष्ट है ने उनके कारण बनाए, उनके लिए उनके निमित्त से बनाया हुआ हाँ, अगर पता है कि ये मेरे लिए इन्होंने बनाया है तो वो नहीं लेते हैं। ए प्रमाणे 11 प्रतिमा अने एक शुद्ध सम्यक दर्शन मूल मळी श्रावक धर्मना 12 भेद छे। ख्याल में ये सम्यक दर्शन शुद्ध जो पहले कहा यानी सम्यक दर्शन एक बात और ये 11 प्रतिमा ऐसे मिलकर ये 12 व्रत बताए, ये 12 भेद छे। तेमा प्रथम भेद तो 25 मळ दोष रहित शुद्ध अविरत सम्यक दर्शन छे। ये 25 मल दोष रहित सम्यक दर्शन है।
ये कौन से 25 मल दोष है मालूम है प्रभा बेन? नहीं डॉक्टर आपको मालूम है? नहीं कौन बताना चाहेगा? हाँ दो जन के तो हाथ देखे मैंने मिली। हाँ बोल बोल। हाँ
हाँ हाँ आशा
हाँ। आपने हाथ उठाया
आराम से आराम से
आराम
हाँ। आठ मद और आठ दोष रहित हाँ
वो बोल चुकी है तो
नहीं नहीं
इधर से आया। अच्छा कोई बात नहीं
अंदर से आ
ये निश्चित रूप से स्वामी जी का चेला होना चाहिए, अंदर से बात आती इसके। देखो देखो अभी आप आठ मद से रहित आठ मद जो है वो कौन से हैं अभी हमारी बहन बताएगी क्योंकि उन्होंने पहले हाथ उठाया था। हाँ रूपमत
कुल और जाती रहे
ये याद करने क्योंकि क्या है कि हम आगे जाके पांचवा गुणस्थान प्राप्त करेंगे कि नहीं तो उस समय अरे ये दोष ऐसा ये ऐसा दोष होता है अरे हमको मालूम नहीं था नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा तो हम पहले से तैयारी रखे ना तो? चलो अब रह गया आठ दोष से रहित आप बताएंगे हाँ?
जो आठ अंग लिखे ना हाँ, उसके अंग उल्टे
हाँ। ये, अरे भैया तुम ये आप गुण बता रहे हाँ। समझ गए
मूढ़ दृष्टि
कोई बात नहीं, अभी ये अपना क्लास वो नहीं है, उसमें अपन टाइम नहीं गवाएंगे, लेकिन इतनी तो बात समझ लेना। अभी आप बहुत आसान पूछ लेता हूँ, छह अनायतन क्या होते हैं सुशीला बेन उन्होंने बताया, इसलिए तुम भी हाँ, उनके फॉलोअर्स अनुयायी इनकी सराहना करना। वो
प्रभावना के नहीं होना,
वो आठ हाँ। अंग में आते हैं, वो आठ अंग जो है ना,
वो आठ अंग नहीं होना।
देखो निकाचित निशंकित आदि जो अंग है उसमें आखिर में वो दो है। अब हम आगे बढ़ेंगे
देखो 25 मल दोष रहित शुद्ध अविरत सम्यक दर्शन छे। पहले तो अविरत वाला लिया और फिर ये 11 प्रतिमाएं सब मिलकर विरता विरत हो जाएगी ना, अभी पांचवा गुणस्थान वर्ती उसको विरता विरत कहते हैं। तथा बाकी ना 11 भेद प्रतिमाओं ना व्रतों सहित होए ते व्रती श्रावक छे। इसलिए पहले में पहले शुद्ध सम्यक दर्शन रखा वहां पर, क्योंकि व्रतों के नाम सुनते हैं पढ़ते हैं तो हम भी लालायित होते हैं ना व्रत धारण करने के लिए। इसलिए ये सम्यक दर्शन के बिना व्रतों के कोई, ये अंक बिना बिंदी कहा उसको मालूम है क्या, सुना है कभी अंक बिना बिंदी क्या होती है?
एकड़ा बिना मिंडा,
सिर्फ जीरो। हाँ।
अभी सुनो, यहाँ पहले में पहले ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो गृहस्थ की बात चल रही है वो गृहस्थ यानी कौन, के जो पांचवे गुणस्थानवर्ती श्रावक है उनकी बात चल रही है। कायदे से देखा जाए तो पांचवे गुणस्थानवर्ती जीवों को ही श्रावक कहने में आता है, लेकिन उपचार से चौथे वाले को भी कहते हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन सच्चा क्या है, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव होना चाहिए। अभी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जो होते हैं वो नियम से पांचवे गुणस्थान में है तो उनको सम्यत्व तो होता ही है, बिना सम्यत्व के केवल, सुनना अभी जरा शांति से, बिना सम्यक्त्व के केवल यह शुद्ध भाव शुभ भाव जो है प्रतिमा के उनको उनका अवलंबन लेना तो वह सच्चा श्रावक नहीं है। कोई कहता है कि मुझे तो दो कषाय के चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता है, लेकिन ये भाव मुझे आते ही नहीं है ना, और शुभ भाव तो है या है, वो तो नहीं करने चाहिए, मैं तो अंतरंग में स्थिर हूँ, अंदर से मुझे ऐसी आवाज आती है कि मैं पंचम गुणस्थान वर्ती हूँ तो कहते हैं वो भी साचा नहीं है। यहाँ तो एक बात निश्चित करे कि दो कषाय के चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता भी होगी और साथ में अपने अपने शक्ति के अनुसार, ये शक्ति के अनुसार इसका अर्थ क्या है, स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसमें कम अधिकता होती है, क्योंकि जैसी जैसी अंतरंग में स्थिरता होवे वैसे वैसे ऊपर ऊपर के यानी दो नंबर पांच नंबर ग्यारह नंबर ऐसी प्रतिमाएं धारण करने के शुभ परिणाम इस जीव को सहज हो जाते हैं। यानी ये निश्चित है कि वहां दो कषाय का चोकड़ी का अब हम करणानियोग द्रव्यानियोग पढ़ रहे ना, अभाव हुआ है और दो कषाय वहां मौजूद है तो जितने कषाय मौजूद है उस कषाय के अनुसार, अभी उनके कौन से कषाय मौजूद है बहन पंचम गुणस्थान वर्ती के, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोक और संज्वलन क्रोधमान माया लोक, तो उसके अनुसार उनको शुभ भाव होंगे ही होंगे दोनों ही साथ में, सराहता और वितरकता। इसलिए कोई मैं कहता तो नहीं, नहीं नहीं मुझे सिर्फ वितरकता है, कोई कहता है वितरागता तो हो जाएगी, अभी तो हम केवल ऐसे शुभ परिणाम तो रखें। देखो शुभ परिणाम रखने के लिए अच्छा है वो, नहीं रखो ऐसा नहीं कह रहे, पर उससे मेरा गुणस्थान ऊपर का हो गया है ऐसी हमारी खोटी मान्यता नहीं होनी चाहिए, ख्याल में। इसलिए देखो ये 11 प्रतिमाएं की जो बात है ना, तो जैसे जैसे अंतरंग में स्थिरता इस जीव की दृढ़ दृढ़ होती जाती है, वैसे वैसे उच्च उच्च प्रकार के शुभ भाव होते हैं, ख्याल में। तो यहाँ तो देखो अभी आपने देखा था ना, दूसरी प्रतिमा कौन सी देखी थी हमने, व्रत प्रतिमा, उसमें 12 अनुव्रत होते, 12 व्रत होते हैं। उसमें आपने एक बताया था भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी वहाँ जो भोग और उपभोग के जो कोई संयोग है उसमें परिमाण, यानी उसमें हम थोड़ी लिमिट लेते हैं, और आगे जाके परिग्रह त्याग प्रतिमा भी है, यानी उससे भी वो स्ट्रांग है, पहले थी ना, हाँ वहाँ शुद्धोपयोग भी थोड़ा उसके अपेक्षा से कम था, अभी वहाँ शुद्धोपयोग भी अधिक दृढ़ता रूप हुआ और वहाँ वैसे शुभ भाव भी सहज रूप से हुए, ख्याल में। इस तरह से हमें ये पांचवें प्रतिमा को बिल्कुल समझना चाहिए, पांचवें गुणस्थान वर्ती श्रावक का स्वरूप समझना।
देखो यहाँ प्रतिमाएं 11 है ना, अलग अलग स्टेजेस है उसके, तो भले पहले प्रतिमा वाला हो या अंतिम वाला हो, उसका गुणस्थान पांचवा कहलाएगा, और उसके दो कषाय की विद्यमानता है, दो कषाय का अभाव है, फिर भी जितनी विद्यमान है कषाय उसमें कैसे मंदता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कषायों के बहुत वेरिएशन है, असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन है। पांचवे गुणस्थान वाले की जो विशुद्धि है ना, उसमें भी असंख्यात वेरिएशंस है, परंतु स्थूल रूप से उसको 11 में भेज बांट दिया है, उसको प्रतिमा कहा, परिमा कहा। अब आगे पढ़ेंगे,
ये अर्थ तो हमने पढ़ लिया,
28 पेज पर सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना,
28 पृष्ठ पर हम आए हैं, जो सौथी रहेला नहीं, पहला
चाहिए,
र की जगह प करना, सौथी पहला तो शुद्ध सम्यक दर्शन तेज
गृहस्थनो एक बार नो
गृहस्थो नो
एक नौ निकाल देना,
अच्छा एक निकाल देते हैं, धर्म छे सम्यक दर्शन वगर तो कोई प्रकार नो धर्म होतो नथी, आई निश्चय श्रद्धा ने ज शुद्ध सम्यक दर्शन कहूं छे, देवगुरु शास्त्रनी व्यवहार श्रद्धा ते शुभ राग छे, ते खरेखर शुद्ध सम्यक दर्शन नथी, तेथी आई शुद्ध सम्यक दर्शन कही ने शुद्धात्मानी श्रद्धारूप निश्चय सम्यक दर्शन नी वात लीधी छे, धर्मनो सौथी पहलो भेद आवु शुद्ध सम्यक दर्शन छे, चारित्र ते धर्म छे ने सम्यक दर्शन ते धर्मनु मूल छे। ये हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है, आई तो सम्यक दर्शन ने पण धर्म कयो छे, सम्यक दर्शन ते पेलो धर्म छे ने पछी 11 परिमाओ होय छे, ए रीते कुल 12 भेद गृहस्थ धर्म ना होय छे, गृहस्थ ने माटे कोई बीजो धर्म नथी, तेने प्रथम सम्यक दर्शन होवू जोईए, सम्यक दर्शन पछी ज पांचमा गुणस्थान नी परिमाओ होय छे। पहली दर्शन प्रतिमा छे, परिमा छे, तेमा मध मांसादिक स्थूल दोषोनो त्याग होय छे, कोई एम कुतर्क करे के दर्शन परिमा वाला ने मध्यादिकनो त्याग कयो, तो चार पेला चौथा गुणस्थाने ते होय कि तेनो उत्तर एम नथी, चौथा गुणस्थाने पण मध मांस वगैरह ना भक्षण नो भाव होय नहीं, अरे चौथा गुणस्थाने रहेला पण पात्र जीवने मद मांसादीनो भाव होय नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मां कहूं छे के मद मांसादीनो जेने त्याग नथी ते जीव तो देशना ने पण पात्र नथी। नहीं समझ में? देखो उसमें ऐसा शब्द है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न का उत्तर कि देशना नो पात्र नथी यानी क्या, तो उसमें ऐसा लिखे तस्य देशना नास्ती। यानी क्या है देशना, यानी कोई देव है या कोई मुनि महाराज है या कोई सम्यक दृष्टि है, वह जब आत्मा के बारे में सच्चे देवगुरु शास्त्र के बारे में सात तत्वों के बारे में छह द्रव्यों के बारे में कोई उपदेश देते हैं तो उसको देशना कहेंगे। वह देशना यानी उपदेश, और वह उपदेश सुनकर जब कोई जीव अपने स्वरूप में उसको धारण करते हुए उसी की तरफ जाने का प्रयत्न करेगा, उसी की तरफ यानी अपने स्व की तरफ, तो उसको देशना लब्धि कहेंगे वहां से। तो देशना यानी ये सच्चे देवगुरु शास्त्र या कोई सम्यक दृष्टि इनके द्वारा दी गई हुई उपदेश आत्मा के संबंध में। तो वहां उन्होंने कहा कि ऐसे जीव कौन मध्यम अवसादीनो जेने त्याग नथी ते जीव तो देशना ने पन पात्र नथी। मैंने एक बार आपको बताया था याद होगा, तो कोई भाई हमको मिले बोले अरे हमको जरा साहब तुम्हारा जैन दर्शन सिखाना, साहब बताया था ना। क्यों 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 वो हमको सब हम मित्र बैठते हैं ना तो डिस्कशन करते हैं, तो जो अपने अपने धर्म के हकता है, मुसलमान होगा वो अपनी बात बताता है, वो क्रिश्चियन होता है वो अपनी बात बताता है, हिंदू होता है वो अपने, मैं तो कुछ नहीं जानता है तो तुम मुझको ऐसा सिखाओ मैं सबको चुप बिठा दूं। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये सब डिस्कशन करने को कब बैठते हैं, कब मिलते हैं? बोला अरे रोज हम जब पीने को बैठते तब हम तो मुझे ये बताओ कि उसको देशना देनी क्या नहीं, हम तो देशना देने लायक है ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनको धर्म की बात बताए क्या नहीं बताए। लोग कहते बताने में तुम्हारा क्या जाता है, कभी सुधर जावे तो क्या तुमको पूछ के सुधरने वाला है क्या? तो अमेरिका जाना बंद करना पड़ेगा चलो ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, वहां भी ऐसे लोग हैं कि मैं कहता हूं द्विदल दोष टाल के भोजन बनाने वाले हैं। अभी द्विदल दोष टालना यानी क्या ये अपने को मालूम नहीं है। हाँ आपको मालूम है? बोलो बहन। हाँ 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 ठहरो ठहरो एक 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 मिनट, प्रभा बहन हमारी कुछ बतावे तो मैं अच्छा लगेगा मुझे। द्विदल दोष यानी क्या होता है मालूम है आपको? वो डोल रही है वहाँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है बोल रही। हाँ आप बोलो बोलो बहन। सुनो 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 सुनो। हाँ हाँ अभी अभी मैं बताता हूँ। देखो ऐसे हाँ हाँ देखो दाल जो होती है ना हमेशा वैसे द्विदल होती है, ऐसे जोड़ी होती है। चने की दाल कैसी होती है, चना ऐसा होता है ना, फिर बाद में वो खुल के उसका दो दल होते हैं, उसके दो पार्ट, वो द्विदल बोलते हैं उसको। वो द्विदल और छास दही, अभी दूध को जरा रखो बाजू में, उसको उसके साथ मिलाएं तो उसमें कोई दोष नहीं है सुनना, लेकिन वो मिक्स यानी आप जो क्या बोलते हैं वो दही बड़ा वो मुंह में डाले तो यहाँ असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, लार के साथ उसका संबंध आता है तो वहीं ताबड़तोक। तो वो ऐसा डब्बे में रखा है बाहर रखा है कोई दोष नहीं है, लेकिन वो खाए तो वो दोष है। तो वो द्विदल दोष यानी अभी इन्होंने बताया जैसे छास है, वो छास गर्म करे बाद में उसको चना का लोट डाले तब भी वह दोष जाता नहीं है, ऐसा दोष टाल के। दुबई में भी लोग हैं कि जो खाना ऐसा नहीं बनाते हैं। चलो अभी यहीं रुकते हैं। हाँ जावानी के ज्ञान ते